एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे शख्स के जीवन में झांक रहे हैं जिनका नाम सुनते ही 20वीं सदी की कई तस्वीरें जहन में आ जाती हैं, विंस्टन चर्चिल।
हाँ, और इस सफर में हमारी गाइड होगी सर मार्टिन गिलबर्ट की लिखी एक बहुत ही अहम जीवनी, चर्चिल अलाइफ।
अहम क्यों? मतलब चर्चिल पर तो बहुत कुछ लिखा गया है।
ये इसलिए अहम है क्योंकि गिलबर्ट चर्चिल के आधिकारिक जीवनीकार थे। सोचिए, लाखों दस्तावेजों तक उनकी सीधी पहुंच थी। हर छोटी बड़ी बात, उनकी जीत, उनकी हार, उनके अंदर के विरोधाभास, सब कुछ।
अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ब्रिटेन के वो मशहूर युद्ध वाले प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है?
बिल्कुल नहीं, वो एक सैनिक थे, पत्रकार, पेंटर, इतिहासकार, कमाल के वक्ता, और कई लोग शायद न जानते हों, सामाजिक सुधारक भी थे। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे कोई इंसान, मतलब जबरदस्त मुश्किलें झेलकर, अपनी ही गलतियां करके, फिर भी नेतृत्व की बुलंदियों तक पहुंच सकता है।
और शायद इसीलिए लोग आज भी उनसे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं। ये समझना कि कैसे कोई जिसने इतनी बार असफलता देखी, वो फांसीवाद जैसी इतनी बड़ी चुनौती के सामने दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बन गया।
बिल्कुल सही कहा, गिलबर्ट की ये किताब हमें उस छवि के पीछे ले जाती है, वो सिगार और वी साइन वाला नेता। उसके पीछे का इंसान कैसा था, उसकी कमजोरियां क्या थीं, उसकी प्रेरणाएं, उसकी उलझने।
तो चलिए इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प शख्सियत के जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, उनकी कहानी में उतरते हैं। शुरुआत तो काफी शानदार थी। 1874 में ब्लेनम पैलेस में जन्म, एक बड़े राजनीतिक रसूख वाले परिवार में।
हाँ, पृष्ठभूमि तो देखिए बहुत शाही थी, लेकिन बचपन में वो जो माँ बाप से एक भावनात्मक नज़दीकी होती है वो शायद थोड़ी कम थी। पिता लॉर्ड रैंडॉल्फ अपने राजनीतिक करियर में बेहद व्यस्त थे।
और माँ जेनी जेरोम,
इन्हें चर्चिल में जिंदगी भर एक पहचान बनाने की, कुछ बड़ा कर दिखाने की एक तीव्र इच्छा जगाई।
एक तरह की भूख कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, शायद यही वो आग थी जो उन्हें हमेशा चलाती रही।
स्कूलों में जैसे हैरो और सैंडर्स्ट मिलिट्री कॉलेज, सुना है उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, औसत ही था।
हाँ, अकादमिक रिकॉर्ड शायद बहुत शानदार ना रहा हो, लेकिन उनकी बुद्धि, उनकी चीजों को समझने की क्षमता, वो असाधारण थी। और उन्होंने जल्दी ही पढ़ाई से ज्यादा एक्शन की दुनिया चुन ली।
एक्शन की दुनिया मतलब?
मतलब युवा सेना अधिकारी और युद्ध संवाददाता बनकर वो क्यूबा गए, भारत आए, सूडान पहुंचे। उनके अनुभव तो किसी एडवेंचर कहानी जैसे हैं। सूडान में तो उन्होंने ब्रिटेन के आखिरी बड़े घुड़सवार हमले में हिस्सा लिया था।
वाह।
और फिर वो बोर युद्ध वाला किस्सा, दक्षिण अफ्रीका में युद्ध संवाददाता के तौर पर गए, पकड़े गए और फिर कैद से भाग निकले।
हाँ,
वो किस्सा तो कमाल का है। वो दिखाता है कि उनमें शुरू से ही मुश्किल हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की गजब की काबिलियत थी। उस फरारी ने उन्हें रातों रात ब्रिटेन में हीरो बना दिया।
और इसी शोहरत ने राजनीति के दरवाजे खोले?
बिल्कुल, इसी प्रसिद्धि के दम पर वो 1900 में संसद पहुंचे और यहीं से उनका वो लंबा उतार चढ़ाव वाला राजनीतिक सफर शुरू हुआ।
राजनीति में भी शुरुआत धमाकेदार ही रही। कंजर्वेटिव पार्टी से शुरू किया, लेकिन फिर 1904 में पाला बदल लिया।
हाँ, मुक्त व्यापार के मुद्दे पर वो लिबरल पार्टी में चले गए। इसे क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं और उस जमाने में ये बहुत बड़ा, बहुत साहसी कदम माना जाता था।
ये क्या दिखाता है उनके बारे में, सिद्धांत या महत्वाकांक्षा?
शायद दोनों का मिश्रण, सिद्धांतों पर टिके रहना भी और राजनीतिक मौके पहचानना भी। लिबरल सरकार में मंत्री बनकर उन्होंने कई सामाजिक सुधारों पर काम किया जो शायद उनकी छवि से मेल नहीं खाते।
जैसे कि?
जिससे रोजगार दफ्तर खोलना, बेरोजगारी बीमा शुरू करना, न्यूनतम मजदूरी तय करना, ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी।
फिर 1911 में वो नौसेना मंत्री बने, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। यहाँ उन्होंने कुछ बड़े दूरदर्शी काम किए।
हाँ, बहुत जरूरी बदलाव थे वो। उन्होंने नौसेना को कोयले से तेल पर लाने का फैसला किया। ये बहुत बड़ा कदम था। नेवल एविएशन यानी नौसैनिक हवाई जहाजों को बढ़ावा दिया। वो समझ रहे थे कि भविष्य की जंग जमीन और समंदर के साथ हवा में भी लड़ी जाएगी।
लेकिन फिर आया पहला विश्व युद्ध और 1915 का गैलीपोली अभियान। ये तो उनके करियर पर एक दाग जैसा बन गया।
हाँ, वो उस सैन्य अभियान के मुख्य पैरोकार थे और जब वो बुरी तरह नाकाम हुआ तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी गई। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा लगा जैसे उनका राजनीतिक करियर बस खत्म ही हो गया।
ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा।
जबरदस्त। लेकिन यहीं पर चर्चिल का वो असाधारण गुण सामने आता है, लचीलापन, रेजिलियंस। हार मानकर बैठने की बजाय उन्होंने क्या किया,
उस सेला में शामिल हो गए।
हाँ, और पश्चिमी मोर्चे पर खाइयों में जाकर एक बटालियन की कमान संभाली। सोचिए, पूर्व नौसेना मंत्री अब खाई में लड़ रहा है।
ये तो हिम्मत की बात है।
इसने न सिर्फ उनकी बहादुरी की साख वापस दिलाई, बल्कि उन्हें आम सैनिकों की मुश्किलों का सीधा अनुभव भी दिया। और देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो फिर सरकार में वापस आ गए।
अलग अलग भूमिकाओं में, युद्ध मंत्री, वायुसेना मंत्री, औपनिवेशिक सचिव भी रहे। सुना है मध्य पूर्व के नक्शे को बनाने में भी उनका हाथ था।
हाँ, उनकी भूमिका थी उसमें। फिर वो वापस कंजर्वेटिव पार्टी में लौट आए और वित्त मंत्री बने, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर।
और यहाँ उन्होंने वो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला फैसला लिया 1925 में। ये क्या था संक्षिप्त में?
ये एक आर्थिक नीति थी ब्रिटेन की, करेंसी को वापस सोने के मूल्य से जोड़ने की। इसके आर्थिक परिणाम काफी विवादास्पद रहे। कुछ मानते हैं कि इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ,
और इसी वजह से, और शायद भारत की आजादी जैसे मुद्दों पर मतभेद के कारण, वो 1930 के दशक में राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए,
जिसे वाइल्डनेस ईयर्स कहते हैं।
बिल्कुल, वो अपनी पार्टी में हाशिए पर चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनका वक्त अब बीत चुका है।
लेकिन इसी अकेलेपन के दौर में उन्होंने वो किया जिसके लिए इतिहास उन्हें सबसे ज्यादा याद रखता है।
हाँ, वही एडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी के बढ़ते खतरे के खिलाफ वो लगभग अकेले ही चेतावनी दे रहे थे लगातार,
जब बाकी सब तुष्टिकरण माने अपीजमेंट की नीति अपना रहे थे।
सही कहा, जब यूरोप के ज्यादातर नेता सोच रहे थे कि हिटलर को थोड़ा बहुत देकर शांत रखा जा सकता है, चर्चिल चीख चीख कर कह रहे थे कि ये आग से खेलना है। वो आंकड़े दे रहे थे, जर्मनी की सैन्य तैयारियों का ब्यौरा दे रहे थे।
ये उनकी दूरदर्शिता थी
और नैतिक साहस भी,
जानते हुए कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा फिर भी सच बोलते रहना।
और फिर जब उनकी चेतावनियां सच साबित हुई, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ।
तो 1939 में उन्हें फिर से नौसेना मंत्री बनाया गया, जैसे इतिहास ने उन्हें पुकारा हो। और फिर मई 1940 में, जब ब्रिटेन के लिए हालात सबसे ज्यादा नाजुक थे, नॉर्वे में हार के बाद चैम्बरलेन ने इस्तीफा दिया।
तब 65 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने।
हाँ, और उस वक्त उन्होंने वो मशहूर भाषण दिया, मेरे पास खून, मेहनत, आंसू और पसीने के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। ये शब्द उस वक्त ब्रिटेन के अकेलेपन और उसके लड़ने के जज्बे का प्रतीक बन गए।
बैटल ऑफ ब्रिटेन, लंदन पर बमबारी, ब्लिट्स। उस मुश्किल दौर में उनका नेतृत्व कैसा था?
अटूट। उन्होंने रेडियो भाषणों से लोगों का हौसला बनाए रखा। कूटनीति के मोर्चे पर भी वो कमाल कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से वो खास रिश्ता बनाना,
ताकि अमेरिका युद्ध में शामिल हो।
हाँ, और स्टालिन के सोवियत संघ के साथ वो मुश्किल लेकिन जरूरी गठबंधन बनाना, ये सब उनकी असाधारण क्षमता दिखाता है।
लेकिन युद्ध जीतने के ठीक बाद 1945 के चुनाव में वो हार गए।
युद्ध जिताने वाले नायक को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया।
कितना बड़ा झटका लगा होगा उन्हें।
लगा होगा, लेकिन चर्चिल रुके नहीं, विपक्ष के नेता बने और 1946 में अमेरिका के फुल्टन शहर में वो अपना ऐतिहासिक भाषण दिया,
आयरन कर्टन वाला, लो आवरण।
हाँ, जिसने दुनिया को सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव और एक नए तरह के विभाजन, शीत युद्ध की शुरुआत के बारे में साफ तौर पर आगाह किया।
उसके बाद उन्होंने वो विश्व युद्ध पर अपनी किताबें लिखी
6 खंडों में, जिसके लिए उन्हें 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला।
सोचिए, एक राजनेता को साहित्य का नोबेल।
फिर 1951 से 55 तक वो दोबारा प्रधानमंत्री भी रहे।
हाँ, युद्ध के बाद के ब्रिटेन को संभालने में लगे रहे, परमाणु युग की शुरुआत देखी, फिर गिरते स्वास्थ्य के कारण राजनीति से संन्यास लिया और 1965 में उनका निधन हो गया। दुनिया भर में शोक मनाया गया और शब्दों की ताकत से इतिहास बदलने की। तो इस असाधारण जीवन के पीछे का दर्शन क्या था, मतलब क्या चीज थी जो चर्चिल को चलाती थी?
गिलबर्ट की किताब इशारा करती है कि शायद बचपन में जो भावनात्मक दूरी थी, उसने उनमें जीवन भर एक पहचान बनाने, कुछ बड़ा करने की गहरी इच्छा पैदा की, मान्यता की भूख।
और
ब्रिटेन के गौरव, उसकी खासियत, उसकी वैश्विक भूमिका में उनका अटूट, प्रायः रोमांटिक विश्वास था। वो मानते थे कि ब्रिटेन का इतिहास में एक खास मकसद है।
उनके मूल सिद्धांत, उनके कोर बिलीव्स क्या थे?
सबसे बुनियादी विश्वास था मानवीय गरिमा में, व्यक्तिगत आजादी में और लोकतंत्र में। वो लोकतंत्र की कमियों को जानते थे, पर मानते थे कि ये किसी भी तानाशाही से बेहतर है।
और इसी आधार पर उन्होंने फासीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध किया।
हाँ बिल्कुल, उनका मानना था कि ये दोनों ही व्यवस्थाएं इंसान को छोटा बनाती हैं, उसकी आत्मा को कुचलती हैं। ये उनका नैतिक आधार था।
इनके मूल्यों की बात करें तो सबसे पहले शायद वो लचीलापन, रेजिलियंस जहन में आता है।
निश्चित रूप से, बार बार गिरकर उठना, हार से सीखना, ये उनके चरित्र का शायद सबसे बड़ा हिस्सा था। गैलीपोली के बाद सेना में जाना इसका सबूत है।
और भाषा की शक्ति में उनका विश्वास।
हाँ, वो जानते थे कि शब्द कितने ताकतवर हो सकते हैं। उनके भाषण सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, वो हिम्मत बंधाते थे, हौसला देते थे। वो शब्दों को नेतृत्व के एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे।
इतिहास की समझ और भविष्य को भांपने की क्षमता, ये भी बहुत अहम था उनके लिए।
बिल्कुल, 1930 के दशक में हिटलर को लेकर उनकी चेतावनी इसी का नतीजा थी। वो इतिहास से सीखते थे और आने वाले खतरों को पहचानते थे।
एंग्लो अमेरिकी साझेदारी पर भी उनका बड़ा जोर था।
हाँ, वो मानते थे कि ब्रिटेन और अमेरिका का साथ दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है।
साम्राज्यवाद पर उनके विचार थोड़े जटिल थे ना?
हाँ, वो ब्रिटिश साम्राज्य के पक्के समर्थक थे, जो आज के नजरिए से हमें सही नहीं लगता। ये उनके समय की उपज थी, लेकिन फिर भी लोगों की आज़ादी और गरिमा का मूल विचार उनमें कहीं न कहीं हमेशा रहा, खासकर जब यूरोप की बात आती थी।
गिल्बर्ट उनकी निजी लड़ाइयों का भी जिक्र करते हैं, जैसे अवसाद से उनका संघर्ष, जिसे वो ब्लैक डॉग कहते थे।
और ये जानना उन्हें एक आम इंसान के और करीब लाता है। इस ब्लैक डॉग के साथ लड़ते हुए भी वो इतनी ऊर्जा, इतनी लगन से काम करते रहे। ऐसा लगता है जैसे काम और एक बड़ा मकसद होना उनके लिए इस निराशा से लड़ने का एक हथियार था।
और उनके विरोधाभास, एक तरफ अभिजात वर्ग के, दूसरी तरफ मजदूरों के लिए सुधार, साम्राज्यवादी लेकिन यूरोप की आजादी के लिए लड़ने वाले,
इतिहास में डूबे रहने वाले लेकिन टैंक और रडार जैसे नए आविष्कारों के समर्थक।
हाँ,
और यही विरोधाभास उन्हें इतना दिलचस्प बनाते हैं। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थे, एक जीते जागते जटिल इंसान थे। उनकी कमजोरियां और ताकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं।
अगर चर्चिल के इतने लंबे और घटनापूर्ण जीवन से तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हो तो गिल्बर्ट के अनुसार वो कौन से होंगे?
पहला, इसमें कोई शक नहीं, गैलीपोली अभियान की विफलता 1915, और उसके बाद जो हुआ। वो नौसेना मंत्री थे, योजना के मुख्य कर्ता धर्ता थे। जब वो भयंकर रूप से नाकाम हुई तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, इस्तीफा देना पड़ा। लगा कि करियर खत्म।
लेकिन ये निर्णायक कैसे हुआ? ये तो एक बड़ी हार थी।
ये निर्णायक इसलिए था क्योंकि इसने चर्चिल के उस असाधारण लचीलेपन को सबके सामने ला दिया। अपमान सहकर कोने में बैठने की बजाय उन्होंने क्या चुना? मोर्चे पर जाना, सेना में सेवा करना। इससे न सिर्फ उनका सम्मान वापस आया, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत का, आम सैनिक की जिंदगी का अनुभव मिला। इसने दिखाया कि हार अंत नहीं होती। इसने उनके चरित्र को और मजबूत किया।
ठीक है, दूसरा अहम मोड़।
दूसरा, मई 1940 में उनका प्रधानमंत्री बनना। वो पल जब नाजी जर्मनी लगभग पूरे यूरोप पर हावी था और ब्रिटेन बिल्कुल अकेला खड़ा था, उस वक्त उन्हें देश की कमान मिली।
जबकि कुछ साल पहले तक वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे।
हाँ, ये उनके जीवन भर की तैयारी, उनके अनुभवों, उनकी चेतावनियों का चरम बिंदु था। अब उन्हें वो मंच मिला था जहां से वो अपनी इच्छा शक्ति और अपने शब्दों से एक राष्ट्र को एकजुट कर सकते थे, और उन्होंने किया, इतिहास बनाने का मौका।
सही। और तीसरा निर्णायक मोड़ कौन सा था?
तीसरा था 1946 में फुल्टन मिसूरी में दिया गया आयरन कर्टन भाषण। याद रखिए, वो युद्ध जीत चुके थे लेकिन चुनाव हारकर विपक्ष में थे, सत्ता में नहीं थे।
हाँ।
लेकिन इस भाषण से उन्होंने दुनिया को यूरोप में हो रहे एक नए तरह के विभाजन, सोवियत प्रभाव के विस्तार और पश्चिमी देशों के बीच खिंचती एक अदृश्य दीवार, जिसे उन्होंने लौह आवरण कहा, के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया।
ये भाषण क्यों इतना परिवर्तनकारी माना जाता है?
क्योंकि इसने दिखाया कि चर्चिल सिर्फ युद्ध के नेता नहीं थे, उनकी नज़र भविष्य पर भी थी। दुनिया अभी एक महायुद्ध से निकली ही थी और उन्होंने अगले बड़े वैश्विक संघर्ष, शीत युद्ध की आहट को पहचान लिया था और दुनिया को उसके लिए आगाह किया था। इसने उन्हें युद्ध के बाद एक दूरदर्शी वैश्विक विचारक के रूप में स्थापित किया।
चर्चिल के जीवन से आज के दौर में क्या सबक मिलते हैं? उनके अनुभवों से क्या सीखा जा सकता है?
शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि आप असफलता को कैसे लेते हैं, गैलेपोली, 1945 का चुनाव, वो वाइल्डनेस ईयर्स, चर्चिल का जीवन दिखाता है कि हार आपको खत्म नहीं करती
बल्कि आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आगे क्या होगा।
बिल्कुल, हार से सीखना, जिम्मेदारी लेना और फिर से कोशिश करने का जज्बा रखना, ये किसी भी काम में किसी भी इंसान के लिए जरूरी है।
और उनके संवाद का तरीका, मुश्किल समय में भी सच बोलना।
हाँ, संकट के समय साफ, ईमानदार और प्रेरणा देने वाले संवाद की ताकत। उन्होंने लोगों को झूठी उम्मीदें नहीं दी बल्कि खून, मेहनत, आंसू और पसीना मांगा। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में बनावटीपन नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास ज्यादा काम आता है।
उनका लगातार पढ़ते लिखते रहना, इतिहास से सीखना।
हाँ, आजीवन सीखने का महत्व। वो इतिहास को सिर्फ अतीत की कहानी नहीं मानते थे बल्कि भविष्य के लिए एक गाइड मानते थे। आज की तेजी से बदलती दुनिया में लगातार सीखते रहना, समझते रहना कितना जरूरी है, यह हम उनसे सीख सकते हैं।
और वो हिम्मत, 1930 के दशक में जब सभी एक तरफ थे, वो अकेले सच के साथ खड़े रहे।
सही कहा, अलोकप्रिय होने का साहस। कभी कभी सच बोलना या सही के लिए खड़ा होना आपको अकेला कर देता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनना जरूरी है, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस।
उनके ब्लैक डॉग यानी अवसाद से उनके संघर्ष का जिक्र भी बहुत मानवीय लगता है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जो लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं वो भी अंदरूनी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। ये दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के साथ भी बड़ी सफलता हासिल करना मुमकिन है। शायद उनके लिए एक बड़ा मकसद होना, काम में डूबे रहना, इस निराशा से लड़ने का एक तरीका था।
और आखिर में उनकी जटिलता, वो कोई एक रंगी किरदार नहीं थे।
बिल्कुल, और यही उन्हें असली इंसान बनाता है। हमें लोगों को उनकी पूरी जटिलता में देखना चाहिए, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों, ताकतों और कमजोरियों को एक साथ। चर्चिल एक असाधारण व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इंसान भी थे।
तो इस पूरी बातचीत के अंत में अगर चर्चिल के जीवन से तीन सबसे अहम बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? श्रोताओं के लिए तीन मुख्य निष्कर्ष।
पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। महानता अक्सर मुश्किलों के बावजूद नहीं बल्कि शायद उनकी वजह से ही उभरती है। चर्चिल के जीवन की शुरुआती उपेक्षा, उनकी राजनीतिक हार, गैलीपोली जैसा बड़ा झटका, इन सब ने मिलकर उन्हें वो अनुभव और दृढ़ता दी जिसने उन्हें उस ऐतिहासिक भूमिका के लिए तैयार किया। मुश्किलें हमें बना सकती हैं, तोड़ती नहीं हमेशा।
ये बहुत गहरी बात है। दूसरी,
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। नेतृत्व के लिए दूरदर्शिता और इतिहास की समझ कितनी अहम है। चर्चिल की इतिहास की गहरी समझ और आने वाले खतरों को, चाहे वो नाजीवाद हो या शीत युद्ध, वक्त से पहले पहचानने की उनकी क्षमता उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण थी। सिर्फ आज में नहीं, कल पर भी नजर रखना जरूरी है।
सही है। और तीसरी,
एक सार्वभौमिक सीख, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। दृढ़ता यानी परसिवेरेंस और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस, भले ही वो उस वक्त अलोकप्रिय क्यों ना हो, आखिरकार मायने रखता है। चर्चिल का जीवन दिखाता है कि हार से सीखना, सच के लिए खड़े होना और अटूट इरादे के साथ आगे बढ़ते रहना, ये वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में आगे ले जा सकते हैं। ये सिर्फ इतिहास का नहीं, जिंदगी का सबक है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।